ओम शांति। प्राण प्रिय बाबा के इस अविनाशी यज्ञ द्वारा स्वर्णिम संसार के स्वागत की तैयारी में सदैव तत्पर विभूतियों की एक मजबूत माला पिरोई गई। इस माला के एक बेशकीमती मन के हाँ जी का पाठ पक्का करने वाले बाबा का अक्षरशः अनुकरण करने वाले आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी हम सबके मध्य हैं। हम सभी आपका करतल ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धर्म ग्रंथों व पुराणों में वर्णित देवभूमि उत्तराखंड की गोद में वर्ष 1946 में आपका जन्म हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस धनबाद से आपने मास्टर्स डिग्री हासिल करके ONGC में सुप्रीटेंडेंट जियोफिजिक्स के पद पर कार्यरत रहे। आप जब लौकिक शिक्षार्थी थे तब ही आपका सन 1962 में परमात्मा ने आपको चुन लिया था। आप यज्ञ सेवाओं में सहयोगी रहे। अंततः 28 वर्ष लौकिक सेवा के पश्चात आपने स्वयं को परमात्मा को सौंप दिया और अनवरत सेवाएं देकर बाबा का नाम बाला कर रहे हैं। वर्तमान समय आप साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम सभी विषय संपूर्ण स्थिति का आवाहन पर आपके वचनामृत से लाभान्वित होंगे आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। एक बार हम सभी उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ के आदि में बाबा के साथ सब ब्राह्मण वत्स बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे, उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति हमारा पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है और इसकी ध्वनि हम सब के मन मस्तिष्क आत्मा शरीर सभी को शांतिमय स्थिति में ले आती है। बहन जी ने परिचय तो दिया और बहुत लंबा चौड़ा भी परिचय दिया, उसमें संभवतः एक बात जो सबसे बड़ी लॉटरी है हमारी उसको बताना भूल गए। क्या होगी सबसे बड़ी लॉटरी संगम युग में, क्या होगी? साकार मामा बाबा की पालना और बाबा के साथ तो लगभग 7-8 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए ये तो सबसे बड़ी लॉटरी है, सबसे बड़ा अवार्ड है। साथ ही साथ इसमें भी एक बहुत बड़ा और भी अवार्ड्स में भी सबसे बड़ा और अवार्ड और कौन सा हो सकता है कि अंतिम समय जब बाबा अव्यक्त हुए, जब बाबा ने कर्मातीत अवस्था को संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो वह दृश्य हमें अपनी इन आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उस समय बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, जैसा बहन जी ने बताया, इंजीनियरिंग करने के बाद ONGC ज्वाइन किया और आसाम में बाबा ने, बाबा की ही वास्तव में दूरदर्शिता से आसाम जाने का सौभाग्य मिला और अंतिम समय बाबा ने भी हमें बुला लिया। संभवतः आज का विषय भी इसी आधार पर रखा गया है कि संपूर्ण स्थिति का आह्वान जो आज का विषय हमें दिया गया है, तो उस विषय को डील करते हुए आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत उस विषय से संबंधित कुछ बातें बोली हैं। आज मुरली में हम सब ने सुना कि अंतिम समय कौन से गुण होने चाहिए, अंतिम क्योंकि भयानक सीन होगा, हर एक कोई नहीं देख सकता, उसके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, निर्भयता, और साथ में निर्भयता के साथ बिल्कुल अचल अडोल, क्योंकि बहुत हिलाने वाला सीन होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही होगी, जैसा बाबा ने आरंभ में साक्षात्कार में देखा और बाबा ने बताया। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ विभिन्न संप्रदायों में आपस में जो वैचारिक वैमनस्यता है उसके कारण एक दूसरे का खून खराबा, जो और काफी पुराने होंगे, बुजुर्ग होंगे, और या जिन्होंने देखा होगा सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम का भी जैसे जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो किस प्रकार से आपस में खून खराबा था। और अभी तो अंतिम समय तो तीसरा भी और होगा जो बताया, प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्रकार से बाबा ने आज मुरली में ये भी बताया। और बाबा ने और क्या बताया, हम कौन हैं, जो वरदान में बाबा ने कहा आप कौन से बच्चे हो, भाग्यवान, भाग्यवान और भाग्य, इन दो की सदा स्मृति रहे। तो एक तो जो अंतिम समय का हमें आह्वान करना है, संपूर्ण स्थिति का आह्वान करना है, तो उसके लिए हमें कभी भी ये विस्मृति न हो कि संपूर्ण स्थिति के लिए कि मैं अति अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिला है, मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है। ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में एकदम अंदर तक बैठ जाए, सोते जागते उठते बैठते जैसे किसी को कोई लॉटरी लग जाती है तो बस उसकी ही स्मृति रहेगी, इसका ये करना है ये करना है, और इसी तरह एक ये स्मृति रहे। दूसरा बाबा ने बताया, और जो हमने बाबा को देखा अंतिम दो दिनों में, क्योंकि जैसा मैंने बताया अंतिम समय बाबा ने अपने पास बुला लिया था 17 और 18 जनवरी को। 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ आ गए और दो दिन तक बाबा की कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने को मिली। तो उसके आधार पर, आंखों देखी घटनाओं के आधार पर, मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जिससे कि बाबा ने उस संपूर्ण स्थिति का आवाहन किया, और उस संपूर्ण स्थिति का आवाहन करने में सफल रहे। आवाहन तो हो सकता है और भी अन्य आत्माओं ने किया हो जो एडवांस पार्टी में चली गई, लेकिन सबको कुछ ना कुछ कर्म भोग रह गया था, और इस कारण से उन आत्माओं को पुनर्जन्म लेके बचा खुदा हिसाब किताब निपटाना पड़ रहा है। लेकिन बाबा ही एक आत्मा है, ब्रह्मा बाबा, जिसने संपूर्ण स्थिति का आवाहन किया और उसमें सफल रहे, तो वो संपूर्ण स्थिति का हम भी आवाहन कैसे करें कि हम भी सफल हो जाएं। और ये सफलता कहते तो है हम, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सफलता पुरुषार्थ के आधार पर चलती रहती है। इसीलिए वैसा ही हमारा पुरुषार्थ रहे, और इसके लिए बाबा ने एक बात बहुत सहज जो बताई है, वो है हम सब पवित्र तो बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, बाबा के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, चारों सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस है, ज्ञान योग धारणा सेवा आदि आदि, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी भी हम बनेंगे तो बाबा की तरह संपूर्ण स्थिति का आवाहन करने में हम संपूर्ण सफल हो जाएंगे। और इस कारण से हमने जो अंतिम दिनों में बाबा को देखा दो दिन, और पहले भी, वो उसके आधार पे हम अपने को चेक करते चले। बाबा को देखा पहले, जब भी हम 62 में ज्ञान में आए, और उसके बाद 69 तक अंतिम दिन तक बाबा के साथ रहे, तब पढ़ाई भी करते थे, तो उसमें इंजीनियरिंग पास करने के बाद बाबा को जब देखा, तो उस पहले दिन और अंतिम दिन में क्या अंतर था वो भी मैं बताना चाहता हूँ। तो बाबा को देखा, और हम सब ने सुना है, हाँ, बाबा से जब बच्चे मिलते थे तो बस बाबा ने इतना अभ्यास किया हुआ था आत्मा का, आप सबको मालूम है मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा, ये सब लिख के बाबा ने केवल अभ्यास ही नहीं किया था, बल्कि अंदर तक बाबा ने उसको ऐसा धारण कर लिया था कि बाबा जिसको भी देखता था, दृष्टि देता था, तो वो व्यक्ति भी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता था। तो इतनी पक्की बाबा की दृष्टि हो गई थी। और साथ ही साथ पहले तो बाबा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ, ये बाबा आवाहन करता था बच्चों का, और हम लोग चुंबकीय आकर्षण की तरह खिंचकर बाबा के पास चले जाते थे। तो अगर हम भी चाहते हैं संपूर्ण स्थिति का आह्वान हमारा सफल हो तो हम भी अपनी दृष्टि जो बाबा ने बताया है, दृष्टि वृत्ति कृति वो सब एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए हमारी पहले अपने मंशा को वृत्ति को परिवर्तित करें और हर एक को आत्मिक दृष्टि से जैसे ही देखने का अभ्यास होगा, कोई भी चीज का जब प्रमाण मिलता है तो उसे यथार्थ समझना चाहिए, नहीं तो पुरुषार्थ करते चलते हैं, कोलू का बैल जैसे चक्कर काटता रहता है, बहुत लगेगा कई किलोमीटर चल लिया उसे लेकिन वहां का वहीं रहता है। ऐसे ही हम सभी भी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बाबा जिस स्थिति में हमें चाहता है सफल देखना, वो हम कितने हो रहे हैं। तो बाबा ने एक तो ये एग्जाम्पल सेट किया कि बस दृष्टि दी और हम सब भी विदेही एकदम हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, और फिर बाबा देह में लाने के लिए जैसे आ बच्चे आओ, बहुत प्यार से धीरे धीरे बाबा साकार में सहलाता था। हमें ये तो नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक दृष्टि से जिस आत्मा को देखें वो भी आत्मिक भाव में स्थित हो जाए, देह भान को भूल जाए, ये भी चेक करते चलना है, तो हमें लगेगा कि हाँ हम बताए हुए बाबा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो शुरू में तो ऐसा ही होता था, बाबा पूछता था, हाँ बच्चे कुछ पूछना है, हम पूछते थे, बाबा बताता था उत्तर, समाधान देता था। लेकिन जितना जितना समय बीतता जा रहा था, 62 के बाद 63, 1963, 64, 65, 66, जैसे बाबा से बार बार मिलना होता था, एक साल में 3-4 बार तो कम से कम मिलना हो ही जाता था, तो देखते थे जब 66 के करीब से बाबा बस बहुत कम बाबा दृष्टि देता था और बाबा हाँ बच्चे, बाबा के सम्मुख हम जाते थे और एकदम जैसे गुम हो जाते थे, भूल जाते थे हमें कुछ पूछना भी है, क्योंकि बाबा इतने शांत और शक्ति स्वरूप में स्थित होने लगा था कि बस बाबा ने दृष्टि दी, कुछ पूछना है नहीं बाबा बस, और विदेही हो जाते थे। फिर और जब 19, जैसा मैंने बताया कि 69 में हम अपने लौकिक पिताजी के साथ मधुबन में पहुंच गए थे, यहाँ पर 17 जनवरी की सुबह, और उन 2 दिनों में हमने क्या देखा, क्योंकि बाबा ने जरूर आह्वान किया होगा अपनी संपूर्णता का, तभी तो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए बाबा। तो उसकी एक पहचान ये भी है कि बस बाबा के सम्मुख हम जाते थे, पहले तो बाबा हमेशा कुछ ना कुछ पूछते थे, उत्तर हम प्रश्न पूछते थे, बाबा उत्तर देते थे, लेकिन इन 2 दिनों में हमने देखा बाबा के सम्मुख जाते थे, अच्छा बाबा से ये पूछेंगे, मन में संकल्प होता था, बाबा ने दृष्टि दी, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, मन के भाव को भी बाबा तुरंत पढ़ लेते थे। ये जो सफलता पूर्वक आवाहन करने वालों की एक ये बहुत बड़ी पहचान है, जो बाबा ने भी कई बार बताया है कि जितना जितना आप अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो किसी के भी मन का हाल हम जान सकेंगे, दृष्टि देंगे उसके मन में क्या चल रहा है, वो प्रश्न वो जान करके उसका समाधान कर सकेंगे। तो ये कब होगा, हम सब चाहते तो हैं हमारी भी ऐसी स्थिति हो, लेकिन ये कब होगा? बाबा ने उसके कुछ लक्षण बताए। नंबर एक, बाबा ने ये बताया है कि जब अभी बच्चों के विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं, तो इसीलिए व्यर्थ से मुक्ति पाओ। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। तो सबने पूछा, भाई तुम कैसे मूर्ति बनाते हो इतनी अच्छी? कि नहीं, मैं मूर्ति तो बनाता नहीं हूँ, मैं तो भाई वो पत्थर लेता हूँ और छेनी हथौड़ी से उसके चारों तरफ जो व्यर्थ है उसे निकाल देता हूँ, तो मूर्ति अपने आप ही तैयार हो जाती है। देखो कितनी सहज बात है। ऐसे ही हम भी, हमारी संपूर्ण अवस्था हमारे अंदर निहित है। बाबा की भी जैसे संपूर्ण अवस्था सूक्ष्म वतन में थी, समय प्रति समय बाबा संदेशियों से पूछता भी था, जब संदेशी जाती थी, बच्ची देखना उस ब्रह्मा में, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा में और इस साकारी ब्रह्मा में कितना अंतर है, तो वो बच्चियाँ आके बताया करते थे कि संदेशियाँ कि बाबा बस बाकी सब तो वही बिल्कुल एक जैसा है शक्ल सूरत, तेज में फर्क है, जो सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बहुत तेजोमय है। तो बाबा उसी पुरुषार्थ में लगे रहते थे कि किस लिए प्रकार से ये तेज तो पवित्रता से भी आता है, तो पवित्रता कोई साधारण ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मन वचन कर्म स्वपन संकल्प की भी पूरी पवित्रता, वृत्ति तक की भी पवित्रता, इतनी ऊंची पवित्रता को बाबा धारण करते जा रहे थे। तो ये हमें भी देखना है कि हमारे अंदर भी इस प्रकार की पवित्रता आती जाए। बस जिस आत्मा को भी देखें देह भान की, उसे भी विस्मृति हो जाए, और हम तो आत्मिक स्वरूप से देख ही रहे हैं, इसलिए हमें तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तभी भी उसे देह भान की विस्मृति होगी तभी। तो एक तो ये चेक भी करते चले हम कार्य व्यवहार में प्रतिदिन, कि व्यर्थ हमारा बस निकालते चले हैं तो हमारी अंदर की संपूर्ण मूर्ति पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। तो कैसी संपूर्ण मूर्ति? बाबा को तो वो था कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा था, उससे संदेशियां जाके कंपेयर कर सकती थी। हम और आप कैसे करेंगे? क्योंकि वर्तमान तो हमारे सम्मुख है, लेकिन जो संपूर्ण स्थिति है वो हमारे अंदर ही, जैसे वो मूर्ति निहित है, अंदर की तरफ जाने का हमें बार बार अभ्यास होना चाहिए। वो तो आपने सुना ही है कि भाई, कई बार सुनी होगी ये गाथा कि भाई एक व्यक्ति था, थोड़ा बेचैन सा था, गुरु के पास गया, सुना गुरु कथा सुना रहे थे, कुछ आध्यात्मिकता धर्म की बातें, वो बैठ गया, शांति मिलने लगी उसे। इतनी देर में भूकंप आया, सब भागे और सबने कहा गुरुजी आओ आओ आप भी भागो, गुरुजी नहीं भागे। साधारण कथा आप सबने सुनी होगी। तो जब बहुत देर तक धरती हिलती रहे, गुरुजी वहीं स्थित रहे, थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो सबने कहा अरे गुरुजी आपको भय नहीं लगा, इतनी तेजी से ये आपके ऊपर का छपरा हिल रहा था और जमीन हिल रही थी, किसी भी क्षण वो ऊपर वाला आपके ऊपर गिर सकता था छपरा, तो फिर आपको भय नहीं लगा? हम लोग बुला रहे थे आप आए नहीं। तो गुरुजी थोड़ी देर तक तो शांत रहे, फिर गुरुजी ने बताया। क्या बताया? कि मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था, तुमने देखा नहीं, कहाँ भागे थे गुरुजी, आप तो यहीं बैठे हुए थे, हम लोग एकदम भागे, हम लोग बुला रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, क्या फर्क क्या था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। अब हमें भी ये ही अभ्यास होना चाहिए, जब कभी कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, हम बाहर भागते हैं उस आपदा से दूर, जितना दूर भागें। लेकिन अब हमें बाहर की तो सावधानी रखनी है, लेकिन अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए, जिससे हमें समय प्रति समय अंदर भागेंगे तो हमें अपनी संपूर्ण मूर्ति के दर्शन होते रहेंगे, और तब हम कंपेयर भी कर सकेंगे कि वर्तमान में मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ और अब मुझे कैसा बनना है। क्योंकि बाबा ने हम सबको अपने संपूर्ण मूर्ति के दर्शन तो करा ही दिए हैं। लक्ष्मी नारायण तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन अभी ही उस फरिश्ता स्वरूप के दर्शन तो करा दिए हैं, कैसे उनका श्रृंगार होता है, ताज, तख्त और तिलक के द्वारा, वो हम सजी सजाई मूर्ति, तेजोमय मूर्ति बार बार अपनी आंखों के सामने लाते रहे, तो हम स्वतः ही अपने को कंपेयर भी कर सकेंगे तुलनात्मक, और उस स्थिति को प्राप्त भी करते रहेंगे। एक तो वो चाहिए साथ में, तो बाबा भी ये टाइम टू टाइम कंपेयर करता रहता था। और हमें कैसी स्थिति हमें चाहिए, हमें इसके लिए ऐसा होना चाहिए, बाबा ने बताया, सारा आधार हमारे मन संकल्प पर है। बाबा ने भी वैसे तो अनेकों शक्तियां बताई हैं, लेकिन संकल्प और समय, ये दो बड़े खजाने बताए हैं, सबसे बड़े से बड़े खजाने यही हैं। तो संकल्प यानी मन के अंदर कैसे संकल्प। एक व्यक्ति आया राजा के पास, और राजा के पास भिक्षा पात्र था उसके पास छोटा सा, उसने राजा को कहा, राजन मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो राजा ने मंत्री को बोला, जाओ राजकोष में से लाकर इसके भिक्षा पात्र में डाल दो। मंत्री अंदर गया, भर के हाथ लाया, भिक्षा पात्र में डाल दिया, लेकिन भिक्षा पात्र तो भरा नहीं। फिर मंत्री दोबारा गया, फिर लाया, तीसरी बार गया, फिर लाया, तो अनेक बार गया, वो भिक्षा पात्र देखने में तो छोटा था लेकिन भरता ही नहीं था। तो राजा ने कहा, महाराज इसमें जरूर कुछ रहस्य है, देखने में तो ये छोटा है लेकिन ये भरता ही नहीं है। तब उसने कहा कि महाराज इसका रहस्य ये है कि ये भिक्षा पात्र जो बना हुआ है ना, ये मनुष्य के किसका मस्तिष्क का, मन का, उनका, उन हड्डियों का बना हुआ है, और इस कारण से मन में तो जो इच्छाएं होती हैं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा हो जाती है पूर्ण, तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, तो उसका बना हुआ है इसलिए ये कभी भरता ही नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये हमें कैसे अपने संकल्पों को चेक करते रहना है, जो बाबा ने मन के लिए बताया भी है। भक्ति मार्ग में भी मन का गायन करते हैं, क्या करते हैं भक्ति मार्ग में भी, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें नित्य प्रति मन के संकल्पों को, अब हमें ये मोटे मोटे रीति से नहीं देखना है, अपने को चेक नहीं करना है मोटी रीति से, बल्कि और सूक्ष्म रीति से अपने को चेक करते चलना है कि मैं कितना संपूर्णता की ओर आत्मा बढ़ती चली जा रही है। कबीरदास को भी बोलते हैं ना, कबीरदास जी थे, तो कबीरदास ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ऐसी अब हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए, ये भी ना हो स्नेह सबसे हो, प्यार सबसे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भी बात हमने सुनी बस किसी को बताए बिना हमें चैन ना आए, बस मन में ये आए जल्दी से जल्दी, जिससे बहुत स्नेह होता है, प्यार होता है, उससे तो हम घंटों भी बात कर लेते हैं, और जिससे उतना स्नेह नहीं होता, अगर सामने से भी आ रहा होता है तो हम नज़र बचा के दूसरी तरफ से चले जाते हैं। हम सबका ये अनुभव है, ये ही हमारा परिवार है। तो हमें क्या करना है कि कोई भी व्यक्ति से हमारा न किसी से वैर हो, न किसी से स्नेह हो, सबसे बराबर का स्नेह हो हर एक को। बाबा कहते हैं प्रेम जो हो, स्नेह हो, हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखें, सबको समान हो, ये आवश्यकता भी है। नहीं तो किसी से हमारा बड़ा स्नेह होता है, क्लास में होते हैं, और किसी से उतना स्नेह नहीं होता। तो इसीलिए हमें एक तो ये देखना है कि हमारा स्नेह सबसे बराबर हो। होता क्या है, कई बार किसी के प्रति हमारा वैर भाव थोड़ा सा हो जाता है, वैर ना भी हो लेकिन उतनी निकटता नहीं रहती है, क्योंकि हमारा परिवार ही ये हो गया ज्ञानी परिवार। बाहर वाले अगर कोई क्रोध करेगा, कोई बात बोलेगा, तो हमें महसूसता नहीं होगी, क्योंकि हम समझते हैं ये अज्ञानी है। लेकिन अगर दैवी परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोई कटु वचन बोलता है, कोई ऐसी बात अहंकार वश बोलता है, ईर्ष्या वश बोलता है, लोभ क्रोध वश किसी भी विकार के वशीभूत होकर बोलता है, तो हमें वो बहुत लगती है बात। अरे इतने साल पुराना ये, इतने साल पुरानी ये बहन, अभी भी इनके अंदर ये भाव है। तो मैं तो अभी बहुत कम वर्ष का, 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष का हूँ, ये तो 30 वर्ष 40 वर्ष पुराने हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बाबा राजाई की भी परिवार की भी स्थापना कर रहा है, और इसमें हरेक अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार राजाई पद की प्राप्ति में संलग्न है। तो जिसका जिसको पद कम पाना होगा, उसमें अभी तक भी चाहे बहुत वर्ष हो गए हों, कुछ ना कुछ विकारों की वो होगी। तो क्या करना चाहिए हमें, दादी अक्सर एक बात बोलते थे कि कभी भी किसी से अगर ऐसे दैवी परिवार में सबसे प्रेम भाव, हमें लगता है फलानी बहन या फलाना भाई, अभी पहले तो बहुत स्नेही था, अब उसमें इतना स्नेह नहीं है, देखते हैं बात भी उतना प्रेम से नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले, गलती उसकी है, हमारी निगाह में उसकी गलती है, उसकी निगाह में हमारी गलती है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बस दूर हो जाते हैं हम एक दूसरे से, और उनसे बात करना, कम्युनिकेशन गैप वो हो जाता है। अब सतयुग में तो ये संस्कार लेके जा नहीं सकते, सतयुग में तो हर एक में बहुत प्रेम भाव होगा, लेकिन अगर ये संस्कार को हमने यहाँ मिटाया नहीं, तो सतयुग में तो बहुत बहुत साधारण पद के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि ये संस्कार तो वहाँ होगा नहीं, बिल्कुल साधारण पद मिल जाएगा, और फिर त्रेता द्वापर के अंत में कहीं जाके ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन सतयुग में तो जो संपूर्ण स्थिति है, उसमें तो हमारा ये पद मिलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, जितना भी दूरी हो मन की, उन बहन या भाई से जिनसे महसूस होता है मिलो अपना अहम तोड़ करके, क्योंकि अहम मिलने नहीं देगा, लेकिन अपना अहम को दबा करके तोड़ करके आओ बहन जी भाई जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों के बीच में उतना स्नेह नहीं है और इसीलिए आओ थोड़ा बैठ के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, उसको दूर कर लेते हैं। संभव हो सकता है पहली बार में वो बात न माने, आप दूसरी बार जाओ मिलो, तीसरी बार जाओ, फिर क्या होगा आपस में, वो भी तो ज्ञानी आत्मा है लेकिन अहम दोनों का टकराव पर है, तो इसीलिए वो मानेगा। बैठेंगे आप, जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा भी दूर होगी और फिर से वो स्नेह भाव पैदा होगा तो सतयुग में वो स्नेह भाव हमें निकटता में ले आएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए, किसी के साथ भी अगर दूरी महसूस होती हो उनसे मिल करके, ऐसा पुराना वैमनस्य कुछ भी है दूरी दिलों की, उसको दूर कर ले, ये अनुभव होना चाहिए। और जितना जितना ये अनुभव होता जाएगा, ये दूरी कम होती जाएगी, उतना उतना स्नेह भाव बढ़ता जाएगा और उतना उतना फिर हम और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए एक बात ये होनी चाहिए, देखते चलें जिससे हमारा ज्यादा प्रेम है और जिससे बहुत कम प्रेम है, कंपेयर करते चलें सब आत्माओं से, जिससे कम प्रेम है स्वाभाविक रीति से उसके लिए उसके निकट और आने का दिल नहीं होगी, लेकिन उसको आत्मिक भरी दृष्टि दें, आते जाते आओ बहन भाई आओ, जो भी है हम मिले आपस में, और कोई भी जो दिल की दूरी है उसको दूर कर लें, एक ये भाव होना चाहिए। तो बाबा से जब हम 17 जनवरी और 18 जनवरी इन दो दिन में लगभग 6 बार बाबा से मिलना हुआ अलग अलग, कभी बाबा के साथ ना, बाबा कहता था आओ बच्चे आज बाबा के साथ भोजन करो, नाश्ता करो, और ब्रह्मा भोजन में बाबा तो बैठता था, पहले तो जब बाबा मामा थे वो बैठते थे दोनों ही, लेकिन मामा जब चले गए तो बाबा बैठता था एक तरफ भाई एक तरफ बहने वगैरह, या दोनों जो है जैसा प्रोपोर्शन होता था तो एक एक गिट्टी तोड़ के बाबा सबको खिलाता था। समझो भगवान के हाथ से हम खा रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। एक एक को बाबा खिलाता था और बस वो नशा एक अद्भुत ही होता था। ऐसे नशे के कई बार बाबा ने गोल्डन चांस दिए। तो बाबा के साथ बैठना होता था और बाबा इस प्रकार से हर एक को, जब हम मिलते थे बाबा पूछता था हाँ बच्चे कुछ पूछना है जैसा मैंने बताया, लेकिन इन दो दिनों में बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि देते ही बच्चे ये सोच रहे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो मन के भाव को भी बाबा हमारी दृष्टि से, हमारे ऑरा से, जो हमारे चारों तरफ लाइट का ऑरा होता है, हम उन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी वैज्ञानिकों ने कैमरा बनाया है, किरलियन नाम के वैज्ञानिक ने, कि जब जिसका भी फोटो लेना चाहो व्यक्ति का, उस फोटो के साथ वो ऑरा केवल यहाँ ही नहीं होता है जो लाइट का देवी देवताओं के पीछे दिखाते हैं, बल्कि हर अंग में, उंगलियों में, अंगूठे में, हाथ में, नैन का, नाक का, हर एक का ऑरा होता है, एंड सम टोटल पूरा ऑरा वो देवी देवताओं के पीछे दिखाते हैं। तो हम सबके पीछे भी ऑरा है, लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते। मुझे रशिया जाने का सौभाग्य मिला था कई वर्ष पहले, और वहाँ का बहन जी ने इसलिए विशेषकर बुलाया था क्योंकि हमारा संबंध इंजीनियर साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट विंग से है शुरू से, तो इस कारण से वहाँ पर एनवायरनमेंट ईयर वो रशिया मना रहा था, और उस एनवायरनमेंट ईयर में वहाँ पर सौभाग्य मिला जाने का, तो वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में ये किरलियन फोटोग्राफी का उधर हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बहन जी ने उसे बुलाया था। आजकल वो बहन जी भी आए हुए हैं, संतोष बहन जी और सुधा बहन जी, वो मास्को में हैं। तो वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ वो किरलियन वाला, अभी किरलियन साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन उनकी वो इंस्टीट्यूट चलती है, और वो आया, लगभग पूरे दिन भर उसके साथ बात हुई, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आया था, सबका ऑरा उसने निकाला, हाथ का यहाँ पीछे, और एक एक अंग का बातचीत करते हुए और शांत स्थिति में सब तरीके से। फिर उसके बाद वो ले गया वो, और उसके बाद चार दिन बाद रिपोर्ट लेके आया, और उसने बताया कि मेरे पास विश्व भर के सब लोग आते हैं, और चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी आदि आदि, ब्रह्मा कुमारी वाले भी आते हैं समय प्रति समय, उनका भी ऑरा निकालते हैं, और सब देशों के लोग भी आते हैं, तो सबका ऑरा मैं निकालता हूँ, लेकिन जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना किसी का नहीं होता। देखो बाबा ने हम बच्चों को अंदर तक जो सच्चाई और सफाई धारण करने को बोला है, उसके कारण हम सब का जो मन वचन कर्म जो जितना पवित्र होता है तो वो ऑरा आ जाता है, और उससे तो विज्ञान भी धीरे धीरे हमारी बाबा के ज्ञान को सिद्ध करता जा रहा है। तो हमें भी ये देखना है कि अंत में और भी विज्ञान जो है इस बात को वो देखेगा, और उस बात को मान करके जो है फिर दुनिया के सामने जब विज्ञान प्रत्यक्ष करेगा। अभी विज्ञान बता देता है चंद्रमा पर ये लैंड किया, मून के ऊपर फलाना इंस्ट्रूमेंट, फलानी ये बात हुई, विज्ञान जो बता देता है हम सब मान लेते हैं क्योंकि वो आंखों से दिखती है। ऐसे ही अब विज्ञान भी धीरे धीरे आध्यात्मिकता के सब पहलुओं को धीरे धीरे मानने लगा है, चाहे पुनर्जन्म का थोड़ा पहलू हो, चाहे आत्मा की शुद्धता का हो, पवित्रता का हो, चाहे रीबर्थ की बात हो, चाहे पास्ट जन्मों की बात हो, सब धीरे 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 विज्ञान भी उस बात को सिद्ध करता जा रहा है, कितने पुनर्जन्म की बातें होंगी। तो अब हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि मन के अंदर भी हमारे संकल्प व्यर्थ, विकारी या कोई ऐसे संकल्प ना उठें, स्वप्न भी ऐसे ना आए कोई भी। स्वप्न में कई बार मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं, उनके स्वप्न आते रहते हैं, उसके लिए बाबा ने बताया रात के सोते समय बिल्कुल बाबा को याद करके, बाबा को साथी बना के सो, तो मन के स्वप्नों की भी कुछ अशुद्धि नहीं रहेगी, मन के स्वप्न भी सतयुगी और स्वर्णिम स्वप्न होते रहेंगे। तो इस रीति से विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता जा रहा है। तो बाबा की एक बात तो ये देखिए, और जितना जितना हम, क्यों, क्योंकि बाबा ने उतनी पवित्रता प्राप्त कर ली थी, तो हम भी आवाहन जब करेंगे, प्रतिदिन हम आवाहन करें, ये नहीं कि मेरी स्थिति और अच्छी हो जाए, प्रतिदिन हम आवाहन अपनी संपूर्ण स्थिति का करते रहे और प्रतिदिन वो आवाहन होता रहेगा तो धीरे धीरे वो आवाहन हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर घुस जाएगा, सोते समय भी, निंद्रा में भी, संकल्पों में भी, वो हमें संपूर्ण स्थिति के हमारी दर्शन होते रहेंगे। तो इसीलिए एक हम वो करते रहे जो हमने बाबा में देखा। दूसरी बात, कोई भी हमारी अगर कोई पेंडिंग प्रॉब्लम है उसको हम पेंडिंग ना रहने दें, यानी कोई बात है अक्सर करके हम बच्चों में होती है, चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वो बात रह जाती है और अगर बीच में ही शरीर छूट गया तो वो बात को लेकर जब आत्मा चली जाती है तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि वो अतृप्त इच्छा रह गई उसकी, मानव कन्या को समर्पण करना है, सेंटर को मकान बनाना है, जो भी अच्छी बातें हैं उन बातों को हम देखते चले और पूरा करते चले, पेंडिंग उसे छोड़े नहीं, तो उससे क्या होगा, अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं तो अंत में वो ही याद आता है जो बात हमें करनी थी और नहीं कर सके, अंत समय वो बात याद आती है, या वो व्यक्ति याद आता है जिससे बहुत स्नेह हो, या वो व्यक्ति जिससे कोई दुश्मनी हो, तो अंतमति दुर्गति हो जाएगी। अगर बहुत प्रेम वाला याद आया, बहुत दुश्मनी वाला याद आया, अतृप्त इच्छाओं वाली बात याद आई, कोई भी चीज याद आई वैसी गति हो जाएगी। तो इसीलिए अभी कोई से भी न अति स्नेह न अति दुश्मनी, कोई भी से भी ऐसी बात ना हो, पेंडिंग बात ना रहे बची हुई की इसे कल कर लेंगे, जो करना है कलते चले। तीसरी बात, बाबा को भी दो तीन ऐसी बातें रह गई थी, मकान लेना था नक्की लेक वाला, उसी दिन ही बाबा ने पास किया बिल्डिंग को एक दिन पहले ही। फिर इसी तरह बाबा को ये था कि भाई बच्चों को आज सुबह मुरली नहीं सुनाई है, 18 जनवरी को बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई थी, बस बाबा आए, दृष्टि दी और फिर बाबा ऐसे करके जैसे तैयार हो जाते थे और हम सब भी डायरी पेन लेके तैयार होते थे, लेकिन फिर बाबा दृष्टि देने लगते थे। इस तरह 18 जनवरी को पूरा पौना घंटे तक बाबा ने दृष्टि ही दी। अब बाबा जब योग कराते थे, चाहे पौना घंटा हो एक घंटा, बिल्कुल तन एकदम स्थिर, बस दृष्टि बाबा की एक एक बच्चे की तरफ घूमती थी। तो जब हमारा मन डोलता है तो हमारा तन भी डोलता है, तन में भी थोड़ा हलचल होती है। तो इसीलिए इससे चेक करना है कि जितने भी समय मैं बैठूं मेरा तन उसी स्थिति में स्थिर रहे अधिकतर, और ये तब होगा जब मन हमारा स्थिर होगा। तो बाबा ने उस दिन रात्रि को बोला कि आज बच्चे सब भोजन करके आ जाएं, और भोजन करे बिना किसी को नहीं आना है, और सबको बुलाया और आप कई बार सुनाया है, आए बाबा ने मुरली चलाई अंत समय। और बाबा अंतिम जब स्थिति होगी हमारी भी कर्मातीत, तो हमारा लास्ट पेपर कौन सा है, ये शरीर का पेपर, क्योंकि आत्मा इस शरीर के साथ 2400 घंटे रहती है, इसलिए ये अंतिम पेपर हमारा इस शरीर का। तो हमें ये देखना है ये शरीर का पेपर जो है ना, शरीर में दर्द होगा, व्याधि होगी, बहुत प्रकार की चीज होंगी। बाबा को भी 93 ईयर की एज थी, कभी कभी खांसी आती थी, तो हम अपने लिए वो स्वस्थिति का निर्माण करें जो उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सके, न कि परिस्थिति हमारे ऊपर आक्रमणकारी हो। तो वो कैसे होगी परिस्थिति, बाबा के सामने मुरली चला रहे हैं, बाबा खांसी आई, मानो बहुत खांसी आती थी कई बार, आंखें भी गीली हो जाती थी, हम लोगों को लगता था बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बाबा ने इस परिस्थिति के लिए क्या, पास में ही लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का चित्र था, देखो बच्चे अभी तो ये शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो गुणी है और इनको पवित्र बनाना है, बस कल जाके बाबा ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, शरीर भी पवित्र आत्मा भी पवित्र और बस तब कोई भी व्याधि नहीं होगी, कोई भी रोग शोक नहीं होगा और तब बस बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए, ठग्गियां मारनी चाहिए। मैं बाबा की संपूर्ण स्थिति का एक बात बताते हुए पूरा करूंगा कि तो उस दिन बाबा ने बुलाया 18 जनवरी की रात्रि क्लास में और सबको क्लास कराए, तो कर्मातीत अवस्था की संपूर्ण स्थिति की जैसा विषय है, संपूर्ण स्थिति की यही निशानी है कि शरीर के जितने भी कर्म भोग होंगे उनके ऊपर योग बल हमारा विजय प्राप्त कर लेगा। तो बाबा को खांसी भी थी, शरीर उस दिन व्याधि भी थी, लेकिन पूरी मुरली में ना एक बार भी बाबा को खांसी आई, ना गला साफ करने की ऐसा करने की जरूरत पड़ी कफ निकालने की कोई भी प्रकार की, और बाबा की मुरली इतनी ऐसी बिल्कुल निराली रीति से चली। सबको दृष्टि देते हुए बाबा ने वो मुरली चलाई और जो शो करता है कि अंत समय कर्मातीत में जब हमारी भी अवस्था होगी तो हमारे भी शरीर की व्याधियों के ऊपर, कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा। इसके साथ साथ फिर बाबा उठे, बाबा उठ के दरवाजे तक गए। अब बाबा का चलना भी देखो कैसे है, बस हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास कराते थे तो ऐसे नहीं जैसे हम इधर मुंह करके चल दिए, इधर नहीं, मुंह बच्चों की तरफ है और पीछे की तरफ एक एक कदम रखते हुए। बाबा आप इस तरीके से क्यों कि अरे मैं बच्चे हैं डबल राजाई के, जो डबल पवित्र, जो शरीर से और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, इन विश्व महाराजन महारानियों को मैं पीठ कैसे दिखाऊंगा। ये शिव बाबा के महावाक्य होते थे। देखो हमको बाबा कितनी महान नजरों से देखता है, हम भी एक दूसरे को उसी महान नजर से देखें। बाबा दरवाजे तक गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। गए बाबा और वहाँ कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने शरीर को त्यागा। हमें भी ये सौभाग्य मिला पार्ट ऑफ दिस देखने का, क्योंकि हम हिस्ट्री हॉल की छत पर टहल रहे थे। जमुना प्रसाद भाई बड़ी तेजी से साइकिल पर निकले, हमने पूछा अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कि मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, दादी जी ने भेजा है और लगता है बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। वो उधर गया, हम भी, पहले बाबा का कमरा इतना बड़ा नहीं था और बाबा जो ऊपर और जितना जहाँ तक पलंग पड़ा हुआ है बाबा का उतना ही था, और पीछे की तरफ से जो दरवाजा था वो ही था। हम भी वहाँ जाके खड़े हो गए तो हमने देखा दादी जी खड़ी हुई हैं और बाबा जैसे चारपाई पर बैठे हुए हैं, और चारपाई पर बाबा के हाथ में हाथ दादी जी का, और दृष्टि देते हुए बाबा ने विदा ली। तो पीठ हमें दादी जी की पीठ ही दिखाई दी, बाबा थोड़ा सा, लेकिन अंदर जाने का हमने वो प्रयत्न नहीं किया क्योंकि बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था हो रही थी, उसमें कोई व्यवधान न पड़े किसी भी प्रकार का। अंत में किसी को देखेंगे अगर तो उसका भी कोई संकल्प चल सकता है। फिर इसके बाद तो आप सब जानते हैं कि बाबा जब गए, और लेकिन बाबा ने आत्मा को तो पवित्र बनाया ही, शरीर को भी इतना पवित्र बना लिया था, पांच तत्वों से बने शरीर को, कि इतना लगभग 65 घंटे तक वो शरीर रखा रहा। 18 की रात, 18 का दिन, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर बाद बाबा का संस्कार किया गया, जब बड़ी दीदी जो टूर पर गए हुए थे, मनमोहनी दीदी जी, वो लौट के आए, उन्हीं का ही इंतजार हो रहा था, और तब संस्कार किया गया। ऐसे ही हमें भी अंत समय के लिए प्रकृति के इन पांच तत्वों को भी प्रतिदिन कम से कम भी 10 मिनट का योगदान करना है, तब ये प्रकृति और अंत समय ये शरीर भी हमारा साथ देगा। इस शरीर के द्वारा आत्मा सहजता से निकल सके। अंत मते जो बाबा ने करके दिखाया वो अंत में आत्मा सहजता से निकल सके, कोई भी शरीर की खिंचावट ना हो, बाबा की तरह, बाबा बस मैं आत्मा आपके पास आई की आई, अब बाबा मैं आ रहा हूँ, उस दिन पूरा का पूरा ये एहसास हो गया। और एक अंत में मैं मम्मा की एक बात सुना के पूरा करता हूँ जो इससे रिलीवेंट है, कि मम्मा ने 1965 में ना, अब पहले तो यही हम सब की धारणा थी कि हम सब बच्चे जो है वो बाबा मम्मा और हम सब बच्चे इकट्ठे ही परम धाम जाएंगे, मम्मा भी नहीं पहले जाएंगी, बाबा भी नहीं जाएंगे, और ये। लेकिन मम्मा ने जब 1965 में शरीर छोड़ा, ममा सूक्ष्म वतन में गई, तो सूक्ष्म वतन में वहाँ अव्यक्त जो बाबा थे, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा और उनके तन में शिव बाबा, तो उन्होंने पूछा, ममा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया। जाओ बच्ची, अभी आपका शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, सारे बच्चे योग कर रहे हैं, ब्रह्म बाबा भी योग कर रहा है, साकार बाबा, जाओ अपने शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने ममा को नीचे भेजा, तो नीचे ममा आई, काफी देर तक नीचे रही, उसके बाद ममा ऊपर गई, तो बाबा ने पूछा, बच्ची करके आई कर्मातीत स्थिति का अनुभव? कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर सकी। क्यों? बाबा मैं तो बहुत पुरुषार्थ किया कि शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर तो ठंडा हो चुका था, उसमें कोई चुरपुर नहीं हुई, इसलिए मैं प्रवेश ही नहीं कर सकी, इसलिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव ही नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा, फिर देखो बच्ची, अभी तुम परम धाम नहीं जा सकते। क्यों? कोई भी, क्योंकि परम धाम में जिस अपनी सीट को छोड़ करके तुम नीचे आई थी, वो पवित्रता की स्टेज अभी तक हासिल नहीं हुई है, जो कर्मातीत स्थिति के अनुभव से ही हो सकती है। इसीलिए अभी तुम्हें पार्ट बजाने के लिए जाना होगा, और जो भी हिसाब किताब रहा हुआ है वो चुकतु करके, फिर जब वो चुकतु हो जाएगा तब तुम परमधाम जा सकोगी, और तब वहां पर जो पवित्रता की स्टेज ओरिजिनल तुम्हारी थी वो हासिल हो जाएगी, और तब अपनी सीट पर जाके बैठ सकोगी। तो ये भी सब बच्चों को बताना कि पवित्रता की इस जन्म में जो हमें ये शरीर मिला है, इससे ही हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, और इससे ही पा करके तभी हम अपने घर जा करके परम धाम अपनी सीट पर बैठ सकेंगे, क्योंकि तब हम अपनी ओरिजिनल स्टेज को, प्योरिटी की स्टेज को पाएंगे। कर्मातीत अवस्था हर एक की अपनी अपनी है, उस स्टेज को पाके तब हम अपनी सीट पर जाकर बैठ सकेंगे। इसलिए सब बच्चों को कहना, कोई भी बच्चा अपनी वर्तमान स्थिति से कभी भी असंतुष्ट ना हो। अरे मेरे पे धन होता तो मैं धन से सेवा करता, मेरा शरीर तंदुरुस्त होता तो मैं और शरीर से सेवा करता। नहीं, जो भी मिला है बाबा ने बेस्ट दिया है, वो आपके लिए बेस्ट है, तो इसीलिए इसी में संतुष्ट रह के पुरुषार्थ करके हमें अपनी संपूर्ण स्थिति को पाके, जैसे बाबा ने पाया। और ममा अभी भी 60 वर्ष हो गए, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस संपूर्ण स्थिति को पाने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है, और उस स्थिति को प्राप्त करके हम सब फिर अपने अपने घर परम धाम चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मेरे इन भूलों को माफ किया और दिल के गुणों से श्रृंगार किया। समाए हो बाबा भूल सकते नहीं तुम्हें भूलते, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं कब बाबा के संग, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग, प्रभु प्रेम की पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो